पर्सनैलिटी थ्योरीज एंड पर्सनैलिटी असेसमेंट। एक्सपर्ट डॉक्टर श्वेता वर्मा हमारे साथ आ चुकी हैं, जुड़ चुकी हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका डॉक्टर श्वेता जी यहाँ पर आने के लिए। और बहुत से सवाल, जाहिर सी बात है, इस टॉपिक को सुनने के बाद हमारे शिक्षार्थियों के जहन में होंगे, क्योंकि सब जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि आखिरकार हम हमेशा व्यक्तित्व की बात करते हैं, शख्सियत की बात करते हैं, पर्सनैलिटी की बात करते हैं, ये क्या चीज़ है, क्या कॉन्सेप्ट है?
देखिए, हमारा डे टू डे लाइफ में हम हमेशा देखते हैं, हम अलग अलग तरह के लोगों से मिलते हैं और हमने ये जाना है कि हम लोगों में बहुत सारी कॉमन चीज़ें होती हैं एज इंडिविजुअल्स, एज ह्यूमन बींग्स। हम लोगों में बहुत सारी कॉमन चीज़ें हैं। हम एक सबके पास एक नाक है, दो आंखें हैं, लिप्स हैं, बाल हैं, बट स्टिल हम लोगों में इतना सारा कॉमनैलिटीज़ होने के बावजूद भी हम लोग एक दूसरे से इतने ज़्यादा अलग हैं। ऐसा क्यों है? और यही जो हम लोगों में जो एक ह्यूमन इंडिविजुअलिटी है, इसने बहुत ज़्यादा अटेंशन जो है वो गेन करी है ऑफ एकेडमिक साइकोलॉजिस्ट की दैट व्हाई डू दिस एग्जिस्ट। एंड इट इज़ नॉट ओनली इन योर फिजिकल अपीयरेंस बट इन द वे यू स्पीक टू अदर्स, यू बिहेव विद अदर्स, आप कैसे अपने आप को कैरी करते हैं। तो ये जितने भी अप्रोचेस हैं, ये जितने भी अलग अलग इंडिविजुअलिटीज़ हैं, इसने बहुत सारी एकेडमिक साइकोलॉजिस्ट की अटेंशन को गेन किया है। एज ह्यूमन बींग्स we have specific patterns of thinking, feeling and acting. You have your pattern of thinking, feeling and acting. I have my own pattern of thinking, feeling and acting. और यही जो हमारा patterns है different, ये provide करते हैं and they represent who we are, who am I. The way I think and I deal with others will tell about my personality. The way you do it will tell about yours personality. And the way the learners are doing it will tell about their own personality. हमने बहुत बार we have found this thing also that we say that this person is jolly, this person likes to be sad all the time, this is always happy. तो मतलब this is how we differentiate among individuals कि उनका personality ऐसा है, वो बहुत उनके साथ रहती हूँ तो I feel very happy, and that person is very jolly, that person is very good to talk to. तो ऐसी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें एक दूसरे से अलग करती हैं और इस तरह के इम्प्रेशंस भी हम कैरी करके रखते हैं जब हम लोगों से इंटरेक्ट करते हैं कि पहले ही हम अपने एक जहन में ये बना लेते हैं कि अच्छा, इनसे बात करनी है तो इनसे इस लेवल की बात की जा सकती है बिकॉज इनका पर्सनैलिटी वैसा है। तो मे बी वॉट ही लाइक्स और वट शी लाइक्स डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन और किस तरह से हम लोगों से इंटरेक्ट करने की कोशिश करते हैं। अब क्या है कि जो स्टडी ऑफ पर्सनालिटी करते हैं, जैसे कि मैंने आपको कहा कि बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट इस पर काम कर रहे हैं, तो उन्होंने बहुत सारी थ्योरीज भी डेवलप की हैं और बहुत सारे ऐसे असेसमेंट टूल्स भी इन लोगों ने डेवलप किए हैं जो हमें बेसिकली बताते हैं कि हाउ पीपल डिफर फ्रॉम ईच अदर एंड हाउ वी कैन असेस, वी कैन मेक एन असेसमेंट ऑन द डिफरेंट पर्सनैलिटी ट्रेट्स। आई वुड से जो बेसिकली पर्सनैलिटी टर्म है उसको हम बहुत सारे अलग अलग फीचर्स और अपेरेंट फीचर्स में यूज़ करते हैं, बट साइकोलॉजिस्ट रेफर करते हैं कि ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स पैटर्न्स, आपके अंदर ऐसे गुण जो दर्शाते हैं कि किस तरह से आप सोचते हैं, किस तरह से आप अनुभव करते हैं और किस तरह से आप एक्ट करते हैं, आप किस तरह से बिहेव करते हैं, तो उसे हम एक तरह से कह सकते हैं कि पर्सनालिटी का पार्ट होते हैं वो। और जो कैरेक्टरिस्टिक पैटर्न से हमारा कहने का बेसिकली मतलब ये है कि किस तरह से सब चीज़ें कंसिस्टेंट रहती हैं। जैसे आप आज बिहेव करते हैं, आप आज से 10 साल बाद भी, मतलब देयर आर गोइंग टू बी चेंजेस बिकॉज आप आफ्टर 10 ईयर्स देयर विल बी ग्रोथ फिजिकल एंड मेंटल एज वेल, बट एक जो बेसिक पैटर्न जो किसी भी इंडिविजुअल का रहता है दैट इज गोइंग टू बी द सेम। दैट मीन्स क्या कंसिस्टेंसी है आपकी पर्सनैलिटी में, आपके क्या डिस्टिंक्टिव वेज, आइडियाज, फीलिंग्स है, दूसरों से आप किस तरह से अलग हो, तो ये सब चीज़ें मिलजुल कर एक पर्सनैलिटी बनाती हैं। अब पर्सनैलिटी को हम ये भी कह सकते हैं कि एक तो पहले से काफ़ी ज़्यादा कहा जाता है कि पर्सनैलिटी का मतलब है द पर्सोना, द मास दैट यू कैरी, और ये ग्रीक ड्रामा में इसे हम हमेशा यूज़ करते हैं कि पर्सनैलिटी इज़ मेड अप ऑफ दीज टू वर्ड्स, पर्सोना एंड ऑल दैट। लेकिन कॉन्ट्ररी टू दिस बिलीफ, ये माना जाता है कि पर्सनैलिटी एक्चुअली में किसी भी ह्यूमन का ट्रू नेचर जिसे हम कहते हैं कि एक्चुअल किसी इंडिविजुअल की क्या नेचर है, वो एक्चुअली में इनसाइड क्या है, उसे हम पर्सनालिटी कह सकते हैं। इट इज़ नॉट दैट द वन हु कैरीज समथिंग फॉर शोइंग इट टू द पब्लिक, ऐसा नहीं है। एक्चुअली में इंडिविजुअल कैसा है उसे हम कह सकते हैं कि दैट डिफाइंस हिज और हर पर्सनालिटी। अब पर्सनालिटी को बिकॉज इट इज़ वेरी डिफिकल्ट एंड अ चैलेंजिंग टास्क टू अंडरस्टैंड समवंस पर्सनैलिटी, क्योंकि आपने कई बार सुना होगा कि अपेयरेंसेज आर ऑलवेज डिसेप्टिव, जो दिखता है वो वैसा नहीं होता है. तो किसी की व्यक्तित्व को समझना एक बहुत ही मुश्किल टास्क जो होता है वो माना जाता है कि आप ऐसे सिचुएशन, कुछ लोग सिचुएशनल लीडर्स, जैसे हम लोगों ने पिछले हमारे जो सेकेंडरी का सत्र रहा था उसमें हमने लीडरशिप के बारे में भी बात करी थी, कुछ लोग सिचुएशनल लीडर्स होते हैं, मतलब उनकी पर्सनालिटी सिचुएशंस पे डिपेंड करती है. तो कुछ लोग हमेशा से ही वैसे होते हैं. तो पर्सनालिटी किसी की क्या है इसको समझना इज़ नॉट दैट इजी टास्क. तो उसके लिए काफ़ी हमने टूल्स भी डेवलप किए हैं और डिफरेंट थ्योरीज जो हैं वो डेवलप करी गई हैं, जो अपनी अपनी तरीके से हमें बताती हैं कि किसी इंडिविजुअल की पर्सनालिटी को समझने के लिए हम कौन सा अप्रोच ले सकते हैं और उस अप्रोच से हम कैसे किसी की पर्सनालिटी को समझ सकते हैं.
तो इसी को आगे बढ़ाते हैं और ये भी समझ लेते हैं, अब आपने कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनालिटी समझा दिया, तो डिफरेंट पर्सपेक्टिव क्या है पर्सनालिटी समझने के?
देखिए, डिफरेंट पर्सपेक्टिव से हमारा कहने का ये मतलब होता है कि किस साइकोलॉजिस्ट ने किस तरह से इंडिविजुअल को डिफाइन किया और समझने की कोशिश की. तो जितने भी साइकोलॉजिस्ट है सबका अपना स्कूल ऑफ थॉट होता है, सब अपनी अपनी तरह से पर्सनालिटी को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं. और वो क्यों डिफाइन करने की कोशिश करते हैं? बिकॉज पीपल कम विद देयर प्रॉब्लम्स. तो उनकी प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करने के लिए फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड द इंडिविजुअल एज अ होल, कि किस तरह का इंडिविजुअल है और उसकी क्या प्रॉब्लम्स रही होंगी. तो इसको समझने के लिए डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स हैं. डिफरेंट पर्सपेक्टिव से मैं ये एग्जांपल देना चाहूँगी, जैसे मान लीजिए मैं और आप बैठी हैं, मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ, आप दूसरी साइकोलॉजिस्ट हैं. एक इंडिविजुअल आता है विद वन प्रॉब्लम कि उसको सर में दर्द रहता है और उसने काफ़ी सारे टेस्ट अपने करवा लिए हैं, पर किसी भी टेस्ट से ये पता नहीं चला है कि सर में दर्द का कोई फिजिकल कॉज है, ये पता नहीं चला है. तो मेरा अपना पर्सपेक्टिव है उसकी सर दर्द को समझने का और आपका अपना अलग पर्सपेक्टिव होगा. देखिए, उसकी प्रॉब्लम बेशक एक ही होगी लेकिन मैं उस प्रॉब्लम को अपने तरीके से देखूंगी और आप उसे अपने तरीके से देखेंगे बींग अ डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट. तो पर्सपेक्टिव्स का यही मतलब है कि इंडिविजुअल को समझने के लिए अलग अलग थ्योरीज जो हैं पर्सनैलिटी थ्योरीज वो डेवलप की गई हैं. सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डिफरेंट साइको एनालिटिक पर्सपेक्टिव्स की, जो साइकोलॉजिकली लोगों को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं. उसमें सबसे पहली थ्योरी और सबसे रिनाउंड और फेमस नेम है वो है फ्रॉयड का. ये फ्रॉयड का नाम पूरा है सिगमंड फ्रॉयड. इन्होंने एक थ्योरी बनाई थी और इनकी थ्योरी एम्फेसाइज करती है इन्फ्लुएंस ऑफ अनकॉन्शियस. अनकॉन्शियस जैसे कि हम आगे भी पढ़ेंगे कि हमारे जो हमारा जो माइंड है उसके थ्री लेवल्स उन्होंने कहा. एक लेवल होता है कॉन्शियस लेवल, जो कि मैं और आप अभी हैं, हम लोग आपस में बात कर रहे हैं, हमारे लर्नर्स हमें सुन रहे हैं, तो वो एक कॉन्शियस लेवल पे हमें सुन रहे हैं. एक होता है अनकॉन्शियस लेवल. अनकॉन्शियस लेवल लास्ट लेवल होता है. पहले आया कॉन्शियस लेवल, फिर आएगा सबकॉन्शियस लेवल. सबकॉन्शियस लेवल वो लेवल होता है जैसे मान लीजिए कि कुछ चीज़ें हमारी अवेयरनेस में हैं लेकिन अभी प्रेजेंट मोमेंट में एकदम से मुझे याद नहीं आएंगी, थोड़ा सा जोर डालूंगी तो याद आ जाएगी. फॉर एग्जांपल आज मैं ये हमारा क्योंकि सीनियर सेकेंडरी के लर्नर्स के लिए हमारा प्रोग्राम है, तो उनका एज ग्रुप जो रहेगा मैं उनसे ये पूछूंगी कि क्या उन्हें याद है कि उनका पहला बेस्ट फ्रेंड कौन था. ठीक है, तो अब ये चीज़ है कि इस टाइम आप इसके बारे में नहीं सोच रहे हैं पर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं चीज़ रही है. तो वो हमारे माइंड का एस्पेक्ट है सबकॉन्शियस माइंड. और अनकॉन्शियस माइंड वो वाला एस्पेक्ट है जो ऐसे पेनफुल इवेंट्स हमारी लाइफ में हुए होते हैं जो हमने इस कदर अपने दिमाग में दबा दिए होते हैं कि वो हमें पता भी नहीं होता कि वो हमें इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, बट वो कहीं अनकॉन्शियस लेवल पर रहते हैं. तो कहने का मेरा ये सब एक्सप्लेन करने का यही मतलब है कि फ्रॉयड ने अपनी थ्योरी को इन तीन लेवल्स के अकॉर्डिंगली समझने की कोशिश की. माइंड को समझने के लिए उसने माइंड को तीन लेवल्स में डिवाइड किया और उसका बेसिक पर्पस यही था कि वो अनकॉन्शियस पार्ट जिसमें हमने अपने जो सबसे ज़्यादा पेनफुल या हर्टिंग इवेंट्स जिनको हमने सबसे ज़्यादा दबा के रखा है, इतना दबा के रखा है कि आज हमें याद भी नहीं है कि शायद ऐसा कभी मेरे साथ कुछ हुआ भी था, लेकिन वो चीज़ें अनकॉन्शियस के अंदर जाके कहीं ना कहीं हमारी पर्सनालिटी को इफेक्ट करती हैं, इन्फ्लुएंस करती हैं. तो फ्रॉयड जब भी थेरेपी करते थे तो ह्यूमन माइंड को समझने के लिए वो हमेशा ये एक्सप्लोर करने की कोशिश करते थे कि अनकॉन्शियस माइंड से वो चीज़ें बाहर किस तरह से लेके आएँ, क्योंकि जब वो अनकॉन्शियस माइंड से चीज़ें बाहर लेके आएंगे तभी वो एक इंडिविजुअल की प्रॉब्लम और उसकी पर्सनैलिटी को अच्छे से समझ पाएंगे और उसके प्रॉब्लम को रिजॉल्व करेंगे. अब जब हम अनकॉन्शियस माइंड की बात करते हैं तो इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंस दी गई है सेक्सुअल और एग्रेसिव इंस्टिंक्ट्स को. सेक्सुअल और एग्रेसिव इंस्टिंक्ट्स का मतलब ये है कि कुछ ऐसी अर्जेस जो शायद सोशली हम लोगों के लिए सेक्सुअल अर्जेस, मान लीजिए अगर वो सोशली एक्सेप्टेबल नहीं है, या कुछ ऐसा ट्रॉमा किसी के साथ ऐसा हुआ है, या कुछ ऐसा एग्रेशन है, ये सब चीज़ें क्या हैं कि आपने कहीं ना कहीं अपने अनकॉन्शियस में दबा के रखी हैं, तो उनको बाहर लेके आना अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस, स्पेशली वो लोग बात करते थे जो फ्रॉयड थे, अर्ली चाइल्डहुड जो अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस होते हैं उसमें ऐसी कौन सी बातें हुई होती हैं जो अनकॉन्शियस माइंड में चली गई और वो आज तक भी इंडिविजुअल को इफेक्ट कर रही है. अब उसमें ये जो थ्योरी है ये सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल है साइकोलॉजी में, और ये जो फ्रॉयड्स के जो बहुत सारे आइडियाज़ हैं वो आज भी यूजेज में आते हैं. अगर कई बार हम लोग देखते हैं कि कुछ अगर बच्चों के साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुए होते हैं तो किस तरह से थ्रू आउट लाइफ वो उनको जो है बच्चों को इफ़ेक्ट करते हैं. जब वो यंग भी हो जाते हैं, जब मिडल एज में भी आते हैं, तो वो जो उनका अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंस हुआ होता है वो पूरे ज़िंदगी भर उनको किस तरह से परेशान करता है. तो बेसिकली जो फ्रॉयड की साइको एनालिटिक थ्योरी है, साइको एनालिसिस कहते हैं उनका थ्योरी में, वो जिस टेक्निक को यूज़ करते थे उस टेक्निक को हम साइको एनालिसिस कहते थे. तो वो साइको एनालिसिस के ज़रिए वो अनकॉन्शियस माइंड में जो आपने अपने जो फियर्स हैं जिनको दबा के रखा है उनको बाहर लाने की कोशिश करते थे. अब उनके, जैसे कि मैं आपको समझा चुकी हूँ कि कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस लेवल की उन्होंने बात करी, उसी तरह से उन्होंने पर्सनालिटी का एक स्ट्रक्चर दिया. उन्होंने कहा कि जैसे हमारे माइंड के 3 लेवल्स हैं, उसी तरह से हमारी पर्सनालिटी के भी 3 लेवल्स हैं, 3 स्ट्रक्चर्स हैं हमारी पर्सनालिटी के. तो उन्होंने पर्सनालिटी को डिफाइन किया 3 स्ट्रक्चर्स पे, और वो स्ट्रक्चर्स कौन सा है, पहला है इड, दूसरा है ईगो और तीसरा है सुपर ईगो. इड से उनके कहने का मतलब है कि इड हमारी पर्सनालिटी का वो पार्ट होता है जो प्लेजर प्रिंसिपल पे काम करता है. आपने कई बार इन चीज़ों की अनुभूति की होगी कि आप लोग को कई बार ऐसा लगता है कि बस मुझे ये काम आज ही करना है, मुझे अभी चाहिए, चाहे इसका कोई भी कॉन्सिक्वेंसेस हो. उसे कहते हैं इड एस्पेक्ट, मतलब हमारा वो एस्पेक्ट जिसको सिर्फ प्लेजर चाहिए, पर्सनालिटी का वो पार्ट, दैट पार्ट वर्क्स ऑन प्लेजर प्रिंसिपल ओनली. जैसे एक छोटा बच्चा है, छोटे बच्चे को किसी की होश नहीं होती है, उसे चाहे मम्मी पापा के पास पैसे हैं या नहीं है उसको नहीं पता है, लेकिन उससे जो चाहिए उसे उसी टाइम चाहिए. तो वो एक कहते हैं ना कि दिस दी इड वर्क्स ऑन दी प्लेजर प्रिंसिपल. तो पर्सनालिटी का एक स्ट्रक्चर उन्होंने कहा इड होता है. दूसरा स्ट्रक्चर पर्सनालिटी का होता है ईगो. ईगो का मतलब होता है बैलेंस करना. बैलेंस करना किस चीज़ में? बैलेंस का मतलब है एक, इसे हम कहते हैं कि ईगो एक पुलिस की तरह एक्ट करता है कि व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग एंड यू हैव टू बिहेव अकॉर्डिंगली. तो पर्सनालिटी का दूसरा स्ट्रक्चर है हमारा ईगो, और पर्सनालिटी का तीसरा स्ट्रक्चर है सुपर ईगो. सुपर ईगो का मतलब है कि जो भी आपकी वैल्यूज़ जो आप अपने पेरेंट्स से लेके आते हैं, जो भी आपके संस्कार हैं और जो राइट एंड रॉन्ग है, वो हमेशा राइट रॉन्ग और अपने वैल्यूज़ पे वर्क करता है. तो पर्सनालिटी के स्ट्रक्चर के लिए उन्होंने 3 चीज़ों को डिफाइन किया. एक हमारा इड होता, पर्सनालिटी में इड होता है, एक ईगो होता है और एक सुपर ईगो होता है. और ये सब 3 चीज़ें जो हैं हमें किसी न किसी तरह से बिहेव करवाती हैं. अब जैसे मान लीजिए मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया, तो आप ये समझेंगे कि कहीं ना कहीं हम ऐसा ज़रूर करते हैं कि बहुत बार ऐसी चीज़ आती है कि जो हमारा इड है वो हमें कहता है कि नहीं, मुझे ये काम अभी करना है, अभी करना है, अभी करना है, लेकिन मेरा सुपर ईगो कहेगा कि नहीं, ये चीज़ अभी नहीं कर सकते बिकॉज ये मॉरली सही नहीं है, मॉरली इस वक्त सही नहीं है. लेकिन ईगो बैलेंस करेगा. ईगो क्या करेगा? ईगो कहेगा कि हाँ, ये काम को हम अभी नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है अभी करना. लेकिन वो, मतलब उसने इड को बिल्कुल अलग कर दिया, उसने इड की बात नहीं मानी. लेकिन वो सुपर ईगो से भी हमें जो है, वो सुपर ईगो कह रहा है नहीं, हम ये बिल्कुल नहीं कर सकते. बट ईगो का काम तो बैलेंस करना है इड और सुपर ईगो में, तो ईगो कहेगा कि नहीं इसे हम अभी नहीं कर सकते, जब एप्रोप्रिएट टाइम आएगा इस चीज़ को करने का तब हम ये चीज़ कर सकते हैं। मतलब कोई भी वो, आप आइसक्रीम लेनी है, आपने कहीं नई ड्रेस पहननी है, तो किस तरह से ईगो जो है वो इड प्रिंसिपल, प्लेजर प्रिंसिपल और सुपर ईगो का प्रिंसिपल जो है इसमें बैलेंस मेंटेन करने का काम करता है। अब जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, अब इन्होंने जो जब फ्रॉयड अपनी थ्योरी को डेवलप कर रहे थे, एक तो उन्होंने माइंड का स्ट्रक्चर बता दिया। माइंड का स्ट्रक्चर हमें इसलिए बताया ताकि हम अनकॉन्शियस से अपना पेनफुल चीज़ों को बाहर निकाल सकें और काम कर सकें, और दूसरा उन्होंने पर्सनालिटी का स्ट्रक्चर बताया कि इंडिविजुअल की ये पर्सनालिटी स्ट्रक्चर होती है। उन्होंने ये भी बताया कि पर्सनालिटी का डेवलपमेंट किस तरह से होता है। उन्होंने कहा कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो है वो डिफरेंट स्टेजेस में होता है। डिफरेंट स्टेजेस में पर्सनालिटी डेवलपमेंट की जब उन लोगों ने बात करी तो उन्होंने कहा कि बेसिकली जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है वो 5 स्टेजेस में होता है। तो 5 स्टेजेस पर्सनालिटी डेवलपमेंट की, सबसे पहले शुरू होता है ओरल स्टेज। ओरल स्टेज जब बच्चा पैदा होता है और जब तक वो 18 महीने का होता है, जिसे कहते हैं 0 to 18 months। तो 0 to 18 months में उन्होंने कहा कि पर्सनालिटी किस तरह से डेवलप होती है। इस वक्त में इंडिविजुअल के लिए, एक छोटे बच्चे के लिए जो ग्रेटिफिकेशन है, मतलब हम लोग तो ग्रेटिफिकेशन पे ही डील करते हैं ना कि हम अपने आप को सेटिस्फाई कैसे करते हैं, तो उन्होंने कहा कि इस टाइम पे ग्रेटिफिकेशन जो है वो बच्चा किस चीज़ से लेता है, सकिंग से, जैसे अपनी मदर फीड लेके या फिर अपना थंब को सक करके। तो इस तरह जब वो ये एक्टिविटीज़ करता है तो 0 to 18 months में इन एक्टिविटीज़ से उसका पर्सनैलिटी डेवलप होता है। फिर उसके बाद ये स्टेज ख़त्म हो जाती है और 18 महीने से लेके 36 महीने तक बच्चा किस तरह से सेटिस्फेक्शन जो है वो गेन करता है, वो गेन करता है प्लेजर सेंटर्स ऑन बाउल एंड ब्लैडर एलिमिनेशन। मतलब आप अपने बाउल मूवमेंट्स को किस तरह से कंट्रोल करते हैं, आप टॉयलेट ट्रेन कैसे होते हैं। तो बेसिकली टॉयलेट ट्रेनिंग का भी यही टाइम होता है जो रहता है 1.5 साल से लेके तकरीबन 3 साल तक, 3 साढ़े 3 साल तक। फिर जब ये दोनों चीज़ों से, पहला तो हमने ओरल ग्रेटिफिकेशन किया बच्चे ने 0 to 18 months, तब उसकी पर्सनालिटी उस तरह से डेवलप हुई। फिर उसके बाद उसकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में रोल प्ले किया जिसे हमने कहा एनल स्टेज, एनल स्टेज कहते हैं। एनल स्टेज जब वो अपनी ये बाउल मूवमेंट को कंट्रोल करके किस तरह से प्लेजर जो है वो गेन करते हैं। फिर आता है फैलिक स्टेज। फैलिक स्टेज रहता है 4 to 6 years ऑफ एज। इस टाइम पे पर्सनालिटी डेवलपमेंट में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जो अपने जेनिटल्स होते हैं बच्चों के, उनको टच करके और उनके साथ फॉन्डलिंग करके उनको प्लेजर मिलता है। उसके बाद आता है लेटेंसी स्टेज। लेटेंसी स्टेज आता है 7 to 11 years। इस टाइम पे ये जो प्लेजर जो सेक्सुअल एक्टिविटीज से बच्चे जो गेन कर रहे होते हैं, इससे हटके वो सोशली किस तरह से अपने आप को डेवलप करते हैं, तो वो सोशली एक्सेप्टेबल आर्ट क्राफ्ट में इन्वॉल्व होंगे, डिफरेंट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होंगे, तो उस टाइम पे इस तरह से वो अपना ग्रेटिफिकेशन करते हैं। और लास्ट आता है जेनिटल स्टेज जो रहता है आपका ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी से, मतलब जैसे आपकी टीनेज आ गई, तो उस टाइम पे आपकी जो सेक्सुअल एक्टिविटीज से आप लोग अपना पर्सनालिटी डेवलप करते हैं। और ये कहा गया है कि हर स्टेज में जो चीज़ से आपको ग्रेटिफिकेशन मिलती है वो चीज़ का से ग्रेटिफाई होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर उस टाइम उन चीज़ों से आप ग्रेटिफिकेशन ना ले पाओ तो वो आपके जो फ्यूचर में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स को क्रिएट करती हैं। फॉर एग्जांपल ऐसा कहा गया कि जो 18 to 36 months में जो एनल सेटिस्फेक्शन अगर नहीं मिलती है तो फ्यूचर में जाके क्लीनलीनेस की हैबिट लोगों को नहीं पड़ती है, या अगर आपको 0 to 18 months में थम सकिंग या ब्रेस्ट फीडिंग से आपको ग्रेटिफिकेशन नहीं मिल पाई है तो आप स्मोकर्स बन सकते हैं, यू टेंड टू स्मोक हेविली व्हेन यू ग्रो अप। तो हर एक स्टेज का अपना इम्पोर्टेंस है और हर एक स्टेज में जिस भी तरह से ग्रेटिफिकेशन मिलती है वो ज़रूरी होता है। तो दिस इज़ हाउ पर्सनैलिटी डिवेलप एज पर दी सिगमंड फ्रॉइड्स थ्योरी। उसके बाद सिगमंड फ्रॉइड ने ये भी कहा था कि उन्होंने अपनी थ्योरी में डिफेंस मैकेनिज्म्स की बात करी। डिफेंस मैकेनिज्म्स का मतलब होता है कि ईगो जो है उसको एक बहुत, जैसे मैंने कहा कि एक बहुत डिफ़िकल्ट ड्यूटी करनी होती है बिटवीन दी सुपर ईगो एंड दी इड प्रिंसिपल. तो ईगो जो है दैट इज़ ऑलवेज ट्राइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स, और अगर तो कोई रियलिस्टिक सॉल्यूशन नहीं मिलता है तो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है ईगो को. लेकिन कॉम्प्रोमाइज़ करने पे वो किस तरह से कॉम्प्रोमाइज़ करती है, उसके लिए वो डिफेंसेस यूज़ करती है. मतलब वो अगर नहीं अच्छे से सेटिस्फाई कर पाती अपने प्रेजेंट सिचुएशन को, तो प्रेजेंट सिचुएशन से डील करने के लिए वो एक तरह का अपने एक शील्ड लेके चलती है कि ये काम मैं इसलिए नहीं कर पाई क्योंकि ऐसा हुआ. क्योंकि अगर मैं कोई रीज़न नहीं दूंगी अपने अपनी किसी वो कहते हैं ना कि आई कुड नॉट सक्सीड इन समथिंग, अनलेस आई गिव रीज़न टू माई फेलियर आई विल बी मेंटली नॉट फिट. क्योंकि मैं तो हमेशा वहीं पे उलझी रहूँगी कि मैं इसलिए नहीं कर पाई तो बिकॉज कुछ नहीं हो पाया. लेकिन ऐसे सिचुएशन से डील करने के लिए फ्रॉयड ने कहा था कि हम लोग डिफेंस मैकेनिज्म्स का यूज़ करते हैं. कुछ डिफेंस मैकेनिज्म्स की मैं बात करूँगी, जिससे पहला आता है डिनायल. डिनायल का मतलब है फेलियर टू रिकोगनाइज और एक्नॉलेज. आप कहते हैं कि ऐसा कभी था ही नहीं. फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्टेड टू बिकम अ डॉक्टर, आई कुड नॉट बिकम अ डॉक्टर. तो आपका एक ईगो, जो आपका ईगो है वो ऐसा नहीं एक्सेप्ट करेगा कि आई कुड नॉट बिकम अ डॉक्टर. वो कहेगा कि आई नेवर वांटेड टू बी अ डॉक्टर, ठीक है, इट वाज नेवर माय चॉइस, ये तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे कहा था. तो इसे कहते हैं डिनायल, दैट यू एक्चुअली डिनाई दैट फेलियर टू रिकॉग्नाइज और एक्नॉलेज द एग्जिस्टेंस ऑफ अनप्लेजेंट इवेंट, दैट इट नेवर हैपेंड, आई नेवर वांटेड टू बी. तो डिनायल एक तरह का डिफेंस मैकेनिज्म है. दूसरा डिफेंस मैकेनिज्म आता है डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कि जो इमोशनल इम्पल्सेज हैं वो रीडायरेक्ट हो जाती हैं किसी दूसरे पे. फॉर एग्जाम्पल आपको ऑफिस में आज डांट पड़ी, या आपको आपकी कहीं पे भी वर्क प्लेस पे, या आप बाहर गए तो किसी से आपका झगड़ा हो गया. अब आप उस चीज़ को देयर एंड देन सॉल्व नहीं कर पाए. आप उस चीज़ का, आप एक तरह से कहूँगे कि आप उस चीज़ को रिजॉल्व नहीं कर पाए, क्योंकि शायद सामने वाला आपसे ज़्यादा पावरफुल है तो आप उसे कुछ कह नहीं पाए. अब क्या चल रहा है कि आपके मन में द्वंद चल रहा है, आप साइकोलॉजिकली जो है वो परेशान हैं. तो अब इस परेशानी से बाहर आने के लिए आप क्या करेंगे, डिस्प्लेस कर देंगे. आप घर आएंगे और घर आके आप किसी और पे वहाँ का गुस्सा आप यहाँ निकाल देंगे. और जब एक बार आप गुस्सा निकाल देंगे तो यू आर मेंटली रिलीव्ड. तो डिस्प्लेसमेंट इज अनदर डिफेंस मैकेनिज्म दैट वी यूज टू स्टे फिट मेंटली. देन कम्स द प्रोजेक्शन. प्रोजेक्शन एक और डिफेंस मैकेनिज्म है. इसका मतलब होता है कि जो आप अपनी एट्रीब्यूटिंग ओन अनएक्सेप्टेबल अर्जेस टू अदर्स, जो आप मैं ऐसा नहीं कर पाई ये मेरी वजह से नहीं हुआ, ये किसी और की वजह से हुआ. हम कहते हैं ना कि आई एम प्रोजेक्टिंग दिस ऑन हिम और ऑन हर, कि आई कुड नॉट बिकम दिस बिकॉज शी नेवर गेव मी दैट प्लेटफॉर्म. उन्होंने मुझे कभी इस तरह का प्लेटफॉर्म नहीं दिया कि आई कुड डू समथिंग. तो हम अपनी प्रोजेक्ट कैसे करते हैं अनएक्सेप्टेबल अर्जेस. फिर आता है रैशनलाइजेशन. रैशनलाइजेशन अनदर डिफेंस मैकेनिज्म होता है. ये रैशनलाइजेशन हम किस तरह से करते हैं कि हम लॉजिक्स यूज करते हैं. आई कुड नॉट बिकम अ डॉक्टर बिकॉज आई कुड नॉट स्टडी हार्ड, और आई कुड नॉट गिव अप लॉन्ग आवर्स ऑफ स्टडी फॉर क्लियरिंग द एग्जाम. ठीक है, मतलब आपने हर एक चीज़ को रैशनल थॉट दिया. आज नहीं कर पाई फिर कभी कर लूँगी, ऐसा नहीं कर पाई तो कुछ और बन जाऊँगी. ठीक है, तो दिस इज़ हाउ यू आर टेलिंग योर माइंड, यू आर मेकिंग योर माइंड टू बी स्टेबल. फिर अगेन आता है, नेक्स्ट आता है रिएक्शन फॉर्मेशन. रिएक्शन फॉर्मेशन का मतलब होता है थिंकिंग और एक्टिंग इन वेज दैट इज द एक्सट्रीम ऑपोजिट ऑफ अनएक्सेप्टेबल अर्जेस. फॉर एग्जाम्पल आई लाइक somebody वेरी मच, लेकिन मे बी वो द पर्सन डजेंट एक्सेप्ट मी, तो मैं उसका रिएक्शन फॉर्म करूँगी. मैं बोलूँगी आई डू नॉट लाइक दैट पर्सन एट ऑल. तो ये भी कहते हैं रिएक्शन फॉर्मेशन. फिर आता है रिग्रेशन. रिग्रेशन होता है रिट्रीटिंग टू बिहेवियर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन अर्लियर स्टेज. आपने कई बार कुछ लोगों को देखा होगा जो अडल्ट्स होते हैं लेकिन जो बच्चों की तरह बिहेव करते हैं, जिनकी पर्सनैलिटी ऐसी होती है हम बोलते हैं बहुत बचकानी है. तो वो हम क्यों कहते हैं कि क्योंकि दोज पीपल आर लिविंग इन रिग्रेशन. वो अपने प्रेजेंट सिचुएशन को एक्सेप्ट नहीं कर पाते तो वो अपने बचपन के स्टेज में चले जाते हैं. फिर आता है रिप्रेशन. रिप्रेशन का मतलब है एक्सक्लूजन ऑफ एंजाइटी प्रोड्यूसिंग थॉट्स, फीलिंग्स और इम्पल्सेस फ्रॉम कॉन्शियसनेस. कि आप अपने कॉन्शियसनेस से ही चीज़ों को हटाने की कोशिश करते हो, जैसे देवर नेवर एग्जिस्टिंग. इसे कहते हैं रिप्रेशन. और लास्ट आता है जो यहाँ पे हमारे SLM में है, वो आता है सब्लिमेशन. सब्लिमेशन का मतलब है कि अपनी जो अर्जेस हैं वो उनको आप प्रोडक्टिव तरीके से कैसे यूज़ करते हो. फॉर एग्जांपल अगर आपको गुस्सा आता है तो आप बॉक्सिंग ज्वाइन कर लेते हो, तो वो डिफेंस मैकेनिज्म है सब्लिमेशन. तो इस तरह के कुछ डिफेंस मैकेनिज्म्स की जो है फ्रॉयड ने बात करी थी. और फ्रॉयड की थ्योरी बहुत आज के ज़माने में भी उन्होंने अर्ली 19th century में बनाई थी और वो आज तक भी उनके प्रिंसिपल्स जो हैं वो यूज़ हो रहे हैं.
अब अप्रोचेस की बात कर लेते हैं डॉक्टर श्वेता, और कार्ल ह्यूंग की अगर बात की जाए, उनका अप्रोच क्या है पर्सनालिटी को?
देखिए अभी ये साइको एनालिटिक अप्रोचेस के अंडर ही आता है. पहले हमने फ्रॉयड का साइको एनालिसिस यूज़ किया, अब हम लोग बात करेंगे कार्ल गस्टव ह्यूंग की. अपोज्ड टू द सेक्स एंड एग्रेशन इन ह्यूमन लाइफ, बिकॉज जो फ्रॉयड थे वो हमेशा सेक्स और एग्रेशन ह्यूमन लाइफ में बात कर रहे थे. जो कार्ल गस्टव ह्यूंग थे उन्होंने प्रपोज किया है दैट पीपल आर मोटिवेटेड बाय मोर जनरल साइकोलॉजिकल एनर्जी. सब लोगों में एक जनरल साइकोलॉजिकल एनर्जी होती है, और उन्होंने कहा कि जो डीपेस्ट पार्ट है किसी भी साइक का वो कलेक्टिव अनकॉन्शियस से बना होता है. कलेक्टिव का मतलब होता है ऐसे मटेरियल्स जो सभी ह्यूमन बीइंग्स में कॉमन है. फॉर एग्जांपल मैंने कहा था सबका नाक कान ऊंट सबके पास हैं, और सबके यूनिवर्सल एक्सपीरियंसेस भी सेम होते हैं, तो उन्हें कहते हैं कलेक्टिव अनकॉन्शियस में चीज़ें किस तरह से जाती हैं. तो उन्होंने कहा था कि ये जो कलेक्टिव अनकॉन्शियस होता है ये सेट ऑफ इन्फ्लुएंसेस होता है जो हम अपने फैमिली से इनहेरिट करते हैं, और ह्यूमन रेस वो सभी ह्यूमन रेसेस वो करते हैं. जैसे एक इसका छोटा सा एग्जांपल दूंगी. फॉर एग्जांपल मोस्ट ऑफ द पीपल हैव अ फियर ऑफ स्नेक्स, ठीक है. वो किस तरह से होता है दैट वी हैव इनहेरिटेड, वो कलेक्टिव अनकॉन्शियस से हम लोगों ने इनहेरिट किया है. वो हर एक ह्यूमन रेस को उसका फियर है. तो दिस इज हाउ वी गो ऑन, दिस इज हाउ ह्यूंग ट्राइड टू एक्सप्लेन द पर्सनैलिटी ऑफ द इंडिविजुअल. उनका अप्रोच था कि कलेक्टिव अनकॉन्शियस को लेके वो इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी को समझने की कोशिश करेंगे. और उन्होंने ये भी कहा था कि कलेक्टिव अनकॉन्शियस जो है वो डिफरेंट आर्केटाइप्स की उन्होंने बात करी थी. आर्केटाइप्स क्या होते हैं? मेंटल इमेजेस होती हैं पर्टिकुलर पर्सन की, ऑब्जेक्ट की और एक्सपीरियंसेस की, उनकी उन्होंने बात करी थी. फॉर एग्जांपल आर्केटाइप हो गया कि एक पर्टिकुलर हीरो की इमेज क्या है आपके दिमाग में, पावरफुल फादर की इमेज क्या है, इनोसेंट चाइल्ड की इमेज क्या है. तो इन इमेजेस के बेसिस पे जो हम लोग कैरी करते हैं उनके बेसिस पे उन्होंने ह्यूमन पर्सनालिटी को डिफाइन करने की कोशिश करी थी.
बिल्कुल. आगे हम बात करें अब कैरन हॉर्न की.
हाँ, कैरन हॉर्नी. कैरन हॉर्नी ने बेसिक एंजाइटी की बात करी थी. उन्होंने कहा था कि जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सोशल रिलेशनशिप में पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए है वो है सोशल रिलेशनशिप्स आपके किस तरह से रहते हैं. और बेसिक एंजाइटी उन्होंने कहा था कि उन्होंने एक कॉन्सेप्ट की बात करी थी जिसे हम बेसिक एंजाइटी कहते हैं. और बेसिक एंजाइटी रेफर करती है फीलिंग ऑफ अ चाइल्ड ऑफ बीइंग आइसोलेटेड एंड हेल्पलेस इन अ पोटेंशियली हॉस्टाइल वर्ल्ड, कि किस तरह से एक छोटा बच्चा जैसे महसूस करता है ना कि वो किस तरह से अकेला रह गया और इतना बड़ा संसार है वो कैसे डील करेगा. तो उससे उसने रिलेट किया था बेसिक एंजाइटी से, और इस तरह से वो इंडिविजुअल की पर्सनालिटी को समझने की कोशिश.
अल्फ्रेड एडलर का नाम भी सामने आता है जब हम अप्रोचेस टू पर्सनालिटी की बात कहते हैं.
जब हम अल्फ्रेड एडलर की बात करते हैं तो उन्होंने कहा था कि जो ह्यूमन मोटिव है वो हमेशा स्ट्राइव करता है फॉर अटेनिंग सुपीरियॉरिटी. वो हमेशा इन्फीरियॉरिटी और सुपीरियॉरिटी के कॉम्प्लेक्स में रहते हैं. तो उन्होंने बेसिकली जो अल्फ्रेड एडलर है उन्होंने कहा था कि ह्यूमन पर्सनैलिटी हमेशा ह्यूमन बींग जो है दैट इज स्ट्राइविंग फॉर सुपीरियॉरिटी. उन्होंने बोला था कि ये जो फीलिंग ऑफ सुपीरियॉरिटी है ये कहाँ से निकल के आती है? इन्फीरियॉरिटी की फीलिंग से. और ये इन्फीरियॉरिटी आपको कब मिलती है? जो भी आपके बचपन के एक्सपीरियंसेस रहे होते हैं. उन सभी जितने भी साइकोलॉजिस्ट रहे, जितने भी थ्योरिस्ट रहे, उनकी बेसिकली जो भी थ्योरीज निकल के आई वो उनके अपने बचपन के एक्सपीरियंसेस से कहीं ना कहीं निकल के आई थी.
बिल्कुल. डॉक्टर श्वेता वर्मा, अभी तक आपने हमें समझाया पर्सनैलिटी क्या है, डिफरेंट पर्सपेक्टिव क्या है, इसके बाद आपने अप्रोचेस के बारे में भी जानकारी दी. अब एक टर्म यूज होती है द ट्रेट पर्सपेक्टिव, इसको कैसे समझें हम?
देखिए ट्रेट पर्सपेक्टिव का मतलब है ट्रेट्स होते हैं कि हम में इंडिविजुअली कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो डिफाइन करते हैं हमारी पर्सनालिटी, जिनके बारे में हमने पहले भी बात करी थी कि हम लोग बात करते हैं कि किसी को डिफाइन करते हो कि ही और शी इज ऑलवेज हैप्पी, ही इज जॉली. द नेचर, द ट्रेट्स यू कैरी, उनका पर्सनैलिटी, वो टॉल हैं, वो ऑलवेज स्माइलिंग हैं, वो शॉर्ट हैं, वो फेयर हैं. तो दीज आर द ट्रेट्स दैट यू कैरी एंड दैट इज हाउ वी ट्राई टू डिफाइन यू. तो जब हम पर्सनालिटी ट्रेट्स की बात करते हैं तो अपेरेंट ट्रेट्स को हम लोग कहते हैं कि ट्रेट थ्योरीज ऑफ पर्सनालिटी आइडेंटिफाई डिस्क्राइब एंड मेजर इंडिविजुअल डिफरेंसेस, कि किस तरह से वो आइडेंटिफाई करती हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस को, उनको मेजर करती हैं और उनको सेपरेट करने की कोशिश करती हैं। जो अपेरेंट ट्रेट्स होते हैं जो हमें दिखते हैं सामने, जैसे मैंने आपको बोला किसी का हाइट है या कोई हैप्पी रहता है या कुछ, उसे कहते हैं सरफेस ट्रेट्स जो सामने दिखते हैं। और कॉन्ट्रेरी टू दिस देयर आर सर्टेन सोर्स ट्रेट्स, सरफेस ट्रेट्स तो होगी जो आपको दिख रहे हैं, कुछ होते हैं सोर्स ट्रेट्स कि आपके अंदर से आप किस तरह से बिहेव करते हैं, आप एक्चुअली में ट्रू नेचर आपकी क्या है। तो रेमंड किटल ने डेवलप किया था ट्रेट थ्योरी और उनका जो क्वेश्चन ईयर है विच इज़ नोन एज 16 पर्सनैलिटी फैक्टर, 16 PF, वो बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है जब हम लोग ट्रेट थ्योरी की बात करते हैं। और उन्होंने कहा था कि ये जो 16 फैक्टर्स हैं, उन्हें उन्होंने कहा 16 पर्सनैलिटी फैक्टर्स हैं। कुछ उनमें से मैं बता दूंगी कि कौन कौन से हैं। एक उन्होंने रिजर्व्ड, आउटगोइंग, सीरियस, हैप्पी गो लकी, प्रैक्टिकल, इमेजिनेटिव एंड रिलैक्स्ड और टेंस। इस तरह से उन्होंने दो डायमेंशंस पे लोगों के ट्रेट्स को डिफाइन करने की कोशिश करी है। जैसे कि रिलैक्स्ड टेंस, तो वो डिफरेंट कॉन्टिन्यूम पे है, एक कॉन्टिन्यूम पे आप रिलैक्स्ड हो या आप टेंस्ड हो, दिस इज हाउ ही हैज ट्राइड टू डिफाइन इट। रिजर्व हो या आउटगोइंग हो, सो देयर आर टू कॉन्टिन्यूम ऑफ अ पर्टिकुलर ट्रेट, एक एक्सट्रीम है रिजर्व और दूसरा एक्सट्रीम है आउटगोइंग। तो देयर विल बी सर्टेन क्वेश्चंस एंड बेस्ड ऑन दोज क्वेश्चंस वी वुड बी ट्राइंग टू नो दैट व्हाट काइंड ऑफ पर्सनालिटी, व्हाट इज योर इंक्लिनेशन, यू आर मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स आउटगोइंग पर्सनालिटी और टुवर्ड्स अ रिजर्व्ड पर्सनालिटी। तो दिस इज हाउ वी ट्राई टू मेक आउट द पर्सनालिटी ऑफ द इंडिविजुअल। फिर दूसरा जो थ्योरी आता है ट्रेट पर्सनालिटी ट्रेट पर्सपेक्टिव में, वो आता है आइजिंग का, जिन्होंने प्रपोज किया कि देर आर फोर टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल्स, इंट्रोवर्टेड होते हैं या न्यूरोटिक होते हैं, इंट्रोवर्टेड स्टेबल होते हैं या एक्सट्रोवर्टेड न्यूरोटिक होते हैं, या एक्सट्रोवर्टेड स्टेबल होते हैं जो या तो बहुत न्यूरोटिक हुआ जो बहुत बिना बात के परेशानी लेते हैं, इंट्रोवर्ट हुआ जो अपने में रहते हैं, एक्सट्रोवर्ट हुआ जो मतलब दोज हु आर हैप्पी गो लकी, दोज हु इन्वॉल्व इजिली। तो दिस इज हाउ आइजिंग ट्राइड टू अंडरस्टैंड द पर्सनैलिटी ऑफ द इंडिविजुअल। फिर रिसेंटली मैककरे और कॉस्टा ने भी प्रपोज किया है 5-फैक्टर मॉडल, जिसमें आता है न्यूरोटिसिज्म, एक्सट्रोवर्जन, ओपननेस टू एक्सपीरियंसेस, अग्रीएबलनेस एंड कंसेंशियसनेस। ट्रेट्स को एक्चुअली हम डिस्क्राइब यूज करते हैं टू डिस्क्राइब द बिहेवियर एंड मेक प्रेडिक्शंस बेस्ड ऑन दोज बिहेवियर्स। और ऐसा भी हम लोग कहते हैं कि इट इज सेड दैट द ट्रेट थ्योरीज डू नॉट एक्सप्लेन द पर्सनैलिटी ऑफ अ पर्सन, दे टेल अस लिटिल अबाउट द डिफरेंट कॉजेज बिहाइंड डिफरेंट थिंग्स ऑफ एन इंडिविजुअल।
बिल्कुल, द सोशल कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव भी समझ लेते हैं हम। डॉक्टर श्वेता,
देखिए अभी तक हम लोगों ने ट्रेट पर्सपेक्टिव की बात करी थी और इससे पहले हमने साइकोएनालिटिक थ्योरीज की बात करी। एक सोशल कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव भी होता है, ये पर्सपेक्टिव एल्बर्ट बेंडुरा ने डेवलप किया था। और ये पर्सपेक्टिव ये व्यू करता है कि जो इंडिविजुअल्स हैं दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द इंटरेक्शन बिटवीन पर्संस एंड सोशल कॉन्टेक्स्ट। अगर आप अपने SLM देखेंगे अपनी अगर आप अपनी ये लेसन देखेंगे अपना अपनी बुक देखेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि एक यहाँ पे मॉडल दिया गया है। तो ये प्रपोज करता है कि हमारे जो थॉट्स और एक्शंस हैं वो एक्चुअली में हमारे सोशल वर्ल्ड से ही निकलते हैं। लेकिन ये देखना भी बहुत ज़रूरी है कि ह्यूमन बींग्स में कैपेसिटी होती है सेल्फ रेगुलेशन की और एंगेज इन एक्टिव कॉग्निटिव प्रोसेसेस। मतलब मैं जहाँ से निकल के आती हूँ, जिस सोशल वर्ल्ड से निकल के आती हूँ, वो सोशल वर्ल्ड मेरे थॉट्स और एक्शंस को बहुत ज़्यादा डिफाइन करता है। दैट मीन्स मेरी पर्सनैलिटी को डिफाइन करता है। बट साथ ही ये थ्योरी या ये अप्रोच टू पर्सनैलिटी ये भी कहती है कि हाँ, जहाँ से मैं निकल के आती हूँ वो मुझे बहुत इफेक्ट करता है। बट जो ह्यूमन बींग है उनमें अपनी एक कैपेसिटी है टू रेगुलेट वन सेल्फ, अपने आप को अपने आप कंट्रोल करने की, सही गलत समझने की, और हमेशा एक कॉग्निटिव एक्टिव कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंगली बिहेव करने की। और बेंडुरा ने डेवलप किया था सेल्फ एफिकेसी विच इनकॉर्पोरेट्स अ पर्सन्स कॉग्निटिव स्किल्स, एबिलिटीज एंड एटीट्यूड्स एज रिप्रेजेंटेड इन वंस सेल्फ सिस्टम। कि सेल्फ एफिकेसी हुआ कि आप में क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे आपके क्या कॉग्निटिव स्किल्स हैं, आपकी एबिलिटीज़ क्या हैं और आपके एटीट्यूड क्या है, एंड दीज ऑल थिंग्स आर नोन एज सेल्फ दीज ऑल थिंग कंप्राइज अ सेल्फ एफिकेसी एंड दे आर रिप्रेजेंटेड इन द सेल्फ सिस्टम। आप किस तरह से बने हैं, ये सब चीज़ें आप में कितनी होती हैं. सेल्फ एफिकेसी एक्चुअली इंडिकेट करती है द डिग्री टू विच वन इज कन्विंस्ड ऑफ द एबिलिटीज एंड इफेक्टिवनेस इन मीटिंग द डिमांड्स ऑफ अ पर्टिकुलर सिचुएशन. जो कॉग्निटिव सोशल थ्योरी है वो ज़्यादा फोकस करती है रोल ऑफ थॉट एंड मेमोरी इन पर्सनालिटी.
बिल्कुल, ह्यूमैनिटिक अप्रोच समझना कितना ज़रूरी है.
देखिए, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच, जैसे कि हम लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स अपने अपने तरीके से, सभी का अपना अपना इंपॉर्टेंस है. ह्यूमनिस्टिक अप्रोच इस तरह से ज़रूरी है क्योंकि ये थ्योरीज प्रपोज करती हैं कि जो एक इंडिविजुअल होता है, कोई भी ह्यूमन बींग है, वो अपने आप जो है वो इतने केपेबल हैं दैट दे कैन सॉल्व एनी ऑफ देयर प्रॉब्लम्स ऑन देयर ओन. उन्हें किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है. ह्यूमनिस्टिक अप्रोचेस में बेसिकली जो काउंसलर्स होते हैं वो लोग किसी को सजेस्टिव मोड में बात नहीं कर, वो लोग किसी को डायरेक्टिव मोड में बात नहीं करते कि वो किसी को दी क्लाइंट विल कम और वो क्लाइंट को डायरेक्ट करेंगे कि तुम्हें ऐसा करना है या नहीं करना है. वो ये मान के चलते हैं जो ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजिस्ट होते हैं कि जो मेरा क्लाइंट है उसमें अपनी एबिलिटी है, अपना पोटेंशियल है, वो अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है. वो सिर्फ एक्टिव लिसनर्स रहते हैं हमेशा काउंसलर्स, और बहुत ही सजेस्टिव मोड में बहुत टेक्निकली लोगों को जो गलत चीज है वो बताने की कोशिश करते हैं. ये फोर्स करता है, ये जो ह्यूमनिस्टिक अप्रोच होती है, दिस फोर्स सीक्स एक्सप्रेशन, कि आप कितना अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, कितनी अपने आप अपनी बातें बोल सकते हैं. जितना आप बोलते जाएंगे, अपनी प्रॉब्लम किसी को बताते जाएंगे, आप खुद ही कहीं ना कहीं आपको अपनी प्रॉब्लम का हल भी मिलता जाएगा. ये पर्सपेक्टिव को हम थर्ड फोर्स भी कहते हैं, और ये एम्फेसाइज करती है ऑन ह्यूमन पोटेंशियल एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल्फ अवेयरनेस एंड फ्री विल. इट व्यूज ह्यूमन बीइंग्स एज इनेटली गुड एंड द कॉन्शियस एंड सब्जेक्टिव परसेप्शन ऑफ सेल्फ इज कंसीडर्ड वेरी इंपॉर्टेंट इन दीज अप्रोचेस. अब्राहम मैस्लो ने भी प्रपोज किया था आइडिया ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइज्ड पीपल. और जब उन्होंने मैस्लो ने प्रपोज किया था तो उनका एक डायग्राम जो हम लोग और काफ़ी जगह काफ़ी बार पढ़ते हैं, कि उन्होंने कहा था कि ह्यूमन बींग की कौन कौन सी नीड्स होती है और वो वन बाय वन उन नीड्स को सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं. तो पहले उन्होंने कहा था कि सबसे पहले ह्यूमन बींग्स की नीड है फिजियोलॉजिकल नीड्स, की रोटी कपड़ा मकान. सबसे पहले इंडिविजुअल हमेशा मोटिवेटेड रहता है कि वो इन चीज़ों को पूरा करे. जब ये चीज़ें पूरी हो जाती हैं तो वो सेफ्टी नीड्स की, अब मुझे एक शेल्टर चाहिए, मुझे एक सेफ्टी चाहिए, उसको पूरा करने के लिए हमेशा मोटिवेटेड रहता है. फिर जब ये दो चीजें मिल जाती हैं, बेसिक चीजें पूरी हो जाती हैं, फिर उन्हें चाहिए होता है कि कोई बिलोंगिंगनेस, कोई परिवार हो, कोई सोशल सर्कल हो. फिर जब ये मिल जाता है तो इंडिविजुअल को लगता है अब मेरी एस्टीम नीड्स जरूरी पूरा होना जरूरी है, कि मुझे एक नाम होना चाहिए, मेरा शोहरत होनी चाहिए. जब ये मिल जाता है फिर इंडिविजुअल सेल्फ एक्चुअलाइज्ड इंडिविजुअल्स बन जाते हैं, कि उन्हें इन सब जो वो मतलब दे आर सेटिस्फाइड विद वॉट एवर दे हैव. एंड लास्ट इज दी सेल्फ ट्रांजेंट्स, और सेल्फ ट्रांजेंट में वो इन सब चीज़ों से ऊपर उठ के आते हैं. कार्ल रॉजर ऐसा सोचते थे कि जो बेसिक ह्यूमन मोटिव है वो है एक्चुअलाइजिंग दी टेंडेंसी, कि ह्यूमन बीइंग का यही नेचर है कि अपनी जो टेंडेंसीज है उनको एक्चुअलाइज करना, उनको कम्प्लीटली पूरा करना. और वो बेसिकली अपने आप इतने पोटेंशियल होते हैं कि वो ये कहते थे कि इसे कहते हैं बेसिक रिगार्ड टू द इंडिविजुअल. ये जो बेसिक रिगार्ड होता है वो देती है इंडिविजुअल्स को ह्यूमनिस्टिक पर्सनैलिटी, कि इंडिविजुअल का अपना एक रिगार्ड है, वो अपने आप अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं. तो दिस इज हाउ द ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजिस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑन द बेसिस ऑफ वॉट एन इंडिविजुअल कैन डू ऑन हिज और हर ओन. उसके अकॉर्डिंगली वो थेरेपी अपनी करते हैं और इंडिविजुअल्स की पर्सनालिटी को समझते हैं.
गुडास में इंट्रोड्यूस कराया गया, इसमें इसका कॉन्सेप्ट क्या है?
जो हम इंडियन अप्रोच की बात करें, जो एम्फेसाइज करती हैं और पर्सनालिटीज़, वो तीन क्वालिटीज़ जो कहती हैं कि इंडिविजुअल तीन क्वालिटीज़ से बना है, वो तीन क्वालिटीज़ हैं गुनास. इनकी बात भगवत गीता में भी करी गई है. फर्स्ट है सत्व गुना, दूसरा है राजस गुना, और तीसरा है तमस गुना. इन तीनों गुनास के बेसिस पे हम इंडिविजुअल्स को कैसे डिफाइन करते हैं, जैसे कि मेन एट्रीब्यूट जो है जो सत्व गुना है उसे मेन एट्रीब्यूट कहते हैं, और ये कैरेक्टराइज होता है विद दी गुना ऑफ ट्रूथ, ग्रेविटी, ड्यूटी, डिसिप्लिन, डिटैचमेंट, क्लीनलीनेस, मेंटल बैलेंस, सेंस ऑफ कंट्रोल, डिटर्मिनेशन एंड शार्प इंटेलिजेंस. सो दिस इज द सत्व गुना इन एन इंडिविजुअल. दिस इज हाउ ऑन द बेसिस इफ दिस एग्जिस्ट देन द पर्सन हैज अ सत्व गुना. दूसरा है राजस गुना, कि आप राजस गुना के बेसिस पे किसी इंडिविजुअल को कैसे डिफाइन करेंगे. अ पर्सन डोमिनेटेड बाय किसी भी इंडिविजुअल में अगर ऐसे गुनास, फॉर एग्जांपल विगरस एक्टिविटी, डिजायर फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन, डिससेटिस्फेक्शन या एनवी रहता है, या वो मेटेरियलिस्टिक चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देता है, तो आप कहेंगे कि उसमें राजस गुना ज़्यादा है. तमस गुना कहते हैं हम, तामसिक भी कई बार वर्ड यूज़ करते हैं. अगर कोई इंडिविजुअल ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं एंगर में, एरोगेंस में, मेंटल इम्बैलेंस में, डिप्रेशन में, लेजीनेस में, तो उन्हें कहते हैं कि दिस इज़ नोन एज द तमस गुना, एंड दिस इज़ हाउ वी ट्राई टू डिफाइन ऑन द बेसिस ऑफ इंडियन पर्सपेक्टिव, दैट ऑन द बेसिस ऑफ थ्री गुनाज वी कैन डिफाइन द पर्सनैलिटी ऑफ द इंडिविजुअल.
बिल्कुल, आपने पूरा पर्सनैलिटी समझाया, अप्रोचेस समझाया, और ट्रेट पर्सपेक्टिव क्या है वो भी हमने जाना. अब वो फैक्टर्स जो कि हमारे व्यक्तित्व को, हमारी पर्सनालिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं, उसके बारे में जानना कितना ज़रूरी है और वो क्या हैं?
हाँ, देखिए, पहला जो डिफरेंट फैक्टर्स हमारे पर्सनालिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं, जैसे कि हमने कहा, हमने जब अल्बर्ट बैंडूरा की बात करी थी, हमने कहा सोशियो कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव होता है, जहाँ से हम आते हैं वो सोसाइटी हमारी पर्सनैलिटी को डिटरमाइन करती है. उसी तरह से बहुत सारी और भी चीज़ें डिटरमाइन करती हैं. पहला आता है जेनेटिक फैक्टर्स. जेनेटिक फैक्टर्स कुछ चीज़ें हम अपने जीन्स में लेके आते हैं, और वो जीन्स हमारी पर्सनैलिटी को डिफाइन करता है, जो जीन्स हम इनहेरिट करते हैं अपने पेरेंट्स से. दूसरा होते हैं हमारी अर्ली लाइफ में क्या एक्सपीरियंसेस रहे हैं. जब हम अपने बचपन में होते हैं, जो हमारा चाइल्डहुड होता है, उसमें जो भी पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सपीरियंसेस हमारे रहते हैं डायरेक्टली, वो हमारी पर्सनालिटी को आगे जाकर बहुत ज़्यादा हद तक इन्फ्लुएंस करते हैं. फिर तीसरा आता है प्राइमरी ग्रुप्स. प्राइमरी ग्रुप्स से कहने का मतलब है कि जब भी हम पर्सनालिटी को, पर्सनालिटी डेवलपमेंट को या पर्सनालिटी की बात करते हैं, तो जो प्राइमरी ग्रुप रहता है उसमें फर्स्ट प्राइमरी ग्रुप हमारा जैसे होता है फैमिली, उसका बहुत क्रिटिकल रोल रहता है हमारी पर्सनालिटी को शेप करने में. और फिर रहता है कल्चर, कि हम किस तरह के कल्चरल बैकग्राउंड से आते हैं. कि फॉर एग्जांपल इंडियन कल्चर अपनी तरह का है, कि किसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, मेल्स को या फीमेल्स को, या वेस्टर्न कल्चर में कैसी दी जाती है, तो ये भी हमारी पर्सनालिटी को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है. तो बेसिकली जो चीज़ें पर्सनालिटी को इन्फ्लुएंस करती है, वो आपका जीन्स, आपके प्राइमरी ग्रुप्स, आपकी अर्ली एक्सपीरियंसेस इन लाइफ, एंड द कल्चर फ्रॉम विच यू कम.
और अब जल्दी से हम ये भी जान लेते हैं डॉक्टर श्वेता, कि पर्सनालिटी ट्रेट्स को हम कैसे असेस करते हैं.
देखिए, पर्सनालिटी ट्रेट्स को असेस करने के लिए, बेसिकली पर्सनालिटी को हम कैसे असेस करते हैं, इसके बारे में मैं अभी बात करना चाहूँगी. तो पहले जैसे हम ट्रेट्स की बात कर रहे थे, कि ट्रेट्स कौन कौन से होते हैं, तो ये हमारा एक्चुअली में नेक्स्ट लेसन है, विच इज़ लेसन नंबर 19 इन योर दिस सेल्फ लर्निंग मटीरियल, जिसे कहते हैं पर्सनैलिटी असेसमेंट. तो उन्होंने कहा था कि पर्सनैलिटी को असेस करने के लिए टू वेज ऑफ असेसिंग पर्सनैलिटी ट्रेट्स होते हैं. एक मेथड को कहते हैं कि हम लोग इंडिविजुअल से डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछेंगे, और वो जो आंसर्स करेंगे, अपनी जो भी फीलिंग्स बताएंगे, उसके बेसिस पे उनको असेस करेंगे. और इसके लिए बहुत सारी डिफरेंट पर्सनालिटी इन्वेंट्रीज को हम यूज़ करते हैं. दूसरा जो अप्रोच आता है पर्सनालिटी ट्रेट्स को असेस करने के लिए, वो आता है बेस्ड ऑन प्रायर नॉलेज अबाउट दैट पर्सन, कि मुझे पहले से उसके केस हिस्ट्री के अकॉर्डिंगली उसकी क्या मैं उसके बारे में जानकारी ले सकती हूँ, उसके बेसिस पे या डायरेक्टली ऑब्जर्व करके मैं किसी के ट्रेट्स को जो है वो असेस कर सकती हूँ. जो ट्रेट पर्सनालिटीज की जब हम बात करते हैं कि ट्रेट्स को कैसे असेस करेंगे, तो उसके लिए डिफरेंट टेस्ट डिवेलप किए गए हैं, जिसमें कि मैं पहले भी बात कर चुकी हूँ, 16 पर्सनालिटी फैक्टर जो डेवलप किए गए हैं. 16 पर्सनालिटी फैक्टर भी एक क्वेश्चनियर है, जिसके बेसिस पे हम पर्सनालिटी ट्रेट्स को असेस करते हैं. इसी तरह से MMPI या मिनेसोटा मल्टीफेजिक पर्सनालिटी इन्वेंट्री के बेसिस पे भी ये बहुत वेल नोन टेस्ट हैं, जो पर्सनालिटी ट्रेट्स को जो है वो असेस करते हैं. इन्वेंट्रीज जो होती हैं वो काफ़ी यूज़फुल होती हैं, जब हम पर्सनस जब लोग जो होते हैं वो अपने एक्शंस के बारे में रिपोर्ट करते हैं, बताते हैं. और अब क्या होता है कि समटाइम्स वी कैन बी बायस्ड अबाउट आर ओन कैरेक्टरिस्टिक्स, कि जब हम लोग असेस करते हैं कि किसी की कोई किसी ने मुझे कुछ बताया, तो फॉर एग्जाम्पल आई एंड मी वी आर टू साइकोलॉजिस्ट, मेरा अपना तरीका है, किसी को मापने का आपका अपना तरीका है. इस उलझन से निकलने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि पर्सनैलिटी को असेस करते हुए रेटिंग स्केल्स पे असेस करते हैं. फॉर एग्जाम्पल हम किसी को बोल सकते हैं कि अगर आपको अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बताना है, तो आप उसको 7 पॉइंट स्केल पे बताइए, कि 1 से लेके 7 तक आप क्या सोचते हैं, आप बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नहीं है, या आप एवरेज कॉन्फिडेंट हैं, या आप काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट. तो हम स्केल्स के बेसिस पे जो है वो इंडिविजुअल की पर्सनालिटी को असेस करने की कोशिश करते हैं. तो दिस इज हाउ वी ट्राई टू असेस द ट्रेट्स ऑफ द इंडिविजुअल.
और साइको एनालिटिक अप्रोच क्या है?
साइको एनालिटिक अप्रोच में, क्योंकि हमने हमेशा से बात करी कि साइको एनालिटिक अप्रोच जो है वो ये चीज़ पे फोकस करती है कि अनकॉन्शियस को कैसे बाहर लाया जाए. तो अनकॉन्शियस को बाहर लाने के लिए बेसिकली अब वो डायरेक्टली हम किसी से क्वेश्चन पूछ के किसी का अनकॉन्शियस में नहीं जा सकते. उसके लिए जो दो बहुत वेल नोन टेस्ट आते हैं उनमें से एक आता है रोशा जिंक ब्लॉक टेस्ट, जिसमें डिफरेंट इंक ब्लॉट्स जो है वो किसी इंडिविजुअल को दिखाए जाते हैं और उन्हें कहा जाता है कि आप बताइए कि आपको क्या नजर आ रहा है. डिफरेंट आपको एनिमल नजर आ रहे हैं, या आपको कोई ऑब्जेक्ट नजर आ रहा है, या आपको इंडिविजुअल्स नजर आ रहे हैं, और जो भी उनके आंसर्स होते हैं उसके बेसिस पे डिफरेंट एक पूरा परफॉर्मा होता है, एक पूरा टेस्ट डिवेलप हुआ होता है. तो अगर किसी को कोई इंडिविजुअल्स नजर आ रहे हैं, मेल्स आ रहे हैं या फीमेल्स आ रही हैं, तो फिर हम उसको चेक करते हैं कि इसका क्या मतलब दिया गया है. तो उसके बेसिस पे उसकी पर्सनालिटी असेस करने की कोशिश करते हैं और उसका अनकॉन्शियस रिवील करने की कोशिश करते हैं. उसी तरह से थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट, जिसे टैट भी कहा जाता है, उसमें हम किसी को कोई पिक्चर्स दिखा देते हैं, कोई भी पिक्चर्स, रैंडम पिक्चर. फॉर एग्जाम्पल द रैंडम पिक्चर ऑफ दैट वन एंकर एंड वन एक्सपर्ट इज सिटिंग इन द रूम, दिस इज अ पिक्चर, नाउ यू हैव टू मेक अ स्टोरी ऑन दिस पिक्चर. तो बेस्ड ऑन दैट स्टोरी हम लोग पर्सनैलिटी को असेस करने की, इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी को असेस करने की कोशिश करते हैं. ये तो हो गया साइको एनालिटिक पर्सपेक्टिव. कि साइको एनालिसिस में हम लोग किस तरह से इनडायरेक्ट मटीरियल देके और इनडायरेक्ट मटीरियल से जो वो स्टोरी राइट करेंगे या जो भी हमारे को रिस्पॉन्स देंगे कि उन्हें एनिमल दिखा या ह्यूमन बींग दिखा, उसकी कॉन्टेंट के बेसिस पे हम उनके अनकॉन्शियस तक जाके उनके पर्सनैलिटी को समझने की कोशिश करते हैं.
और ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव,
जब हमने ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव की बात करी तो ये पर्सनालिटी फोकस करती है ऑन द पर्सन्स एक्सपीरियंसेस ऑफ हिज और हर ओन वर्ल्ड. इसलिए जो असेसमेंट रहती है वो बेसिकली कंसर्न रहती है अंडरस्टैंडिंग द परसेप्शन ऑफ पर्सन अबाउट हिज और हर लाइफ सिचुएशन एंड एक्सपीरियंसेस. इसमें रहता है कि डिफरेंट मेथड्स जो हैं वो डिवेलप किए गए हैं टू मेजर्स द सेल्फ कॉन्सेप्ट ऑफ द इंडिविजुअल. इसमें जो एक बेसिक मेथड, जो वन अप्रोच रहती है, दैट इज बेस्ड ऑन selecting from a number of descriptive sentences those which describe him or her. मतलब किसी को describe करने के लिए, for example हम उसे बोलेंगे कि आप अपने आप को describe कीजिए, किस तरह से describe करेंगे, तो कोई कहेगा कि I am very confident या I am nervous. तो इसमें कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, कि इन बेसिस पे हम कैसे बोलेंगे कि किसी की पर्सनालिटी को कैसे अप्रोच डिफाइन करेंगे. तो ये इस तरह से हम करते हैं कि अंडरस्टैंडिंग दैट टेंडेंसी फॉर वेरी हाई और वेरी लो लेवल ऑफ सेल्फ डिस्क्लोजर आर बोथ एन इंडिकेशन ऑफ इमोशनल इमेच्योरिटी. या तो कोई बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा अपने लिए कहते हैं कि आई एम वेरी वेरी कॉन्फिडेंट, या कोई कहते हैं आई एम वेरी नर्वस ऑल द टाइम, दैट मीन्स जो एक्सट्रीम एंड्स पे रहते हैं तो वो इंडिकेशन होता है कि यू हैव एन इम्बैलेंस्ड और इमेच्योर पर्सनैलिटी. तो दिस इज हाउ दे ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस.
और लास्ट में हम समझने की कोशिश करते हैं असेसमेंट ऑफ गुनास.
अब जैसे हमने पिछले लेसन में हमने बात करी थी कि डिफरेंट अप्रोचेस की बात करी, उसी तरह से इस लेसन में उन अप्रोचेस के थ्रू हम असेस कैसे करते हैं. तो जब गुनास की बात आती है तो गुनास को समझने के लिए हम किस तरह से, जैसे सत्व, राजस और तमस गुना को हमने बोला था कि इसके बेसिस पे हम पर्सनालिटी समझ सकते हैं, तो जब हम इनकी बात करते हैं तो इन गुनास को समझने के लिए हम उन इंडिविजुअल की लाइफ में वो किस तरह से बिहेव कर रहे हैं, क्या उनका लाइफ स्टाइल है, उसके बेसिस पे हम उनके गुनास को समझ के उनकी पर्सनालिटी को असेस कर सकते हैं.
बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर श्वेता वर्मा, आप यहाँ पर आई और इतनी अहम जानकारी आपने पर्सनालिटी थ्योरीज और पर्सनालिटी असेसमेंट पर दी.
थैंक यू.